السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوست تو قریب قریب آ جائیں تاکہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. محترم دوستو، علماء کرام، بزرگان دین، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا شکر احسان ہے کہ ہمیں اس نے اپنی محبت میں، اپنی نسبت پر یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرما لے، اور جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اپنا تعلق ہمیں نصیب فرمائے. بار بار ہم سنتے ہیں ہر مجلس میں، فضائل ذکر میں بھی ہیں، کہ اللہ کی محبت میں جمع ہونا مختلف خاندانوں سے، قبیلوں سے کوئی مقصد نہیں، اللہ کی محبت، اللہ کے تعلق پر قیامت کے دن اس کا کیا اجر ملے گا. ہم فضائل ذکر میں پڑھتے ہیں کہ یہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور انبیاء وغیرہ بھی اس پر رشک کریں گے. تو الحمدللہ یہاں ہمارا جمع ہونا محض اسی نسبت پر ہے. پھر آپ علماء کرام ہیں، فضائل ذکر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، فضائل ذکر میں حدیث ذکر فرمائی ہے، عنوانی ہے فضائل ذکر بخاری شریف میں، کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے گشت کرتے رہتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے پھرتے رہتے ہیں، اور جہاں کہیں ذکر کی مجلس ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو آواز دے کر کے بلاتے ہیں، اور اوپر نیچے آسمان تک جمع ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضر ہوتے ہیں، گواہی دیتے ہیں. یہ ساری پورا حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. جی، تو کہتے بھی ہیں کہ واسط تو اس لیے آئے تھے، یعنی دوسرے مقصد کے لیے. تو پھر ادھر سے جواب ملتا ہے اللہ کی طرف سے کہ تم گواہ رہو، ہم نے ان کی مغفرت فرما دی، مغفرت کر دی، کہ اس مجلس میں حاضر ہونے والا محروم نہیں رہتا ہے جس مقصد کے لیے بھی آیا ہو. بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ حضرات کھول کر کے دیکھ لیں. تو اس سے بھی ثابت ہوا مجالی سے ذکر، سمجھ آئی بات. اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جس سے مجالی سے ذکر ثابت ہوتی ہیں. مولانا مفتی رضاء الحق صاحب کا مستقل رسالہ کتاب اب تو اس پر موجود ہے. میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، اس میں سے بیان بھی کیا تھا، سمجھے، کہ ذکر اجتماعی جہری انہوں نے اس کو دلائل سے ثابت کیا. دارالعلوم زکریہ جی ساؤتھ افریقہ میں ان کے شیخ الحدیث حضرت ہمارے مفتی صاحب، مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ، انہوں نے مستقل رسالہ جمع کیا ہے ذکر جاہری اجتماعی، سمجھے. اور وہ تو خود ماشاءاللہ شیخ الحدیث ہیں، کئی برسوں سے उन्होंने इसमें अहादीस से, बुज़ुर्गों के अकवाल से, फ़ुकहा की इबारतों से इसको साबित किया है, इसलिए ये बिदअत नहीं है। समझ आई बात? तो बहरहाल मजालिस ज़िक्र इसके बरकात ये अपनी जगह पर मुस्तकिल हैं। फिर ये हमारा जमा होना जी, फिर हमारी मेहनत करना ज़िक्र की लाइन से, ये किस लिए हैं? मिसाल के तौर पर मदारिस जो हम कायम करते हैं वो तो इल्म के लिए, समझाई बात, शरीयत के इल्म के लिए, दीन के इल्म के लिए, मकातिबी दीनी इल्म के लिए, दावत व तबलीग का काम ये भी तबलीग के लिए कि लोगों तक दीन पहुँचे, सब शोबे हैं माशाल्लाह। तो अब ये जो बुज़ुर्गों के यहाँ एक सिलसिला जारी है सुनेंगे, और हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के दौर से, इसके बाद हसन बसरी रहिमहुल्ला, सुनेंगे बात, तो बहरहाल सहाबा ताबईन वहाँ से ये एक सिलसिला जारी है, समझाई बात। तो ये जो लाइन है जिसको अब इस्तेलाह में तसव्वुफ कहते हैं, समझाई बात, पहले इसको सलूक व एहसान कहते थे, समझाई बात, सलूक व एहसान, इसीलिए मैंने मेरे सामने जो किताब है इसका नाम ही है सलूक व एहसान, समझाई बात। हज़रत मुफ्ती महमूद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह से लोगों ने इसी तसव्वुफ के मुतालिक जो सवालात किए हैं, समझाई बात, इसको मुफ्ती फारूक साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सलूक व एहसान के नाम से जमा किया है। हज़रत मुफ्ती साहब तो माशाल्लाह जामे उस शरीयत व तरीक़त, समझाई बात, तो हज़रत ने जो जवाबात दिए हैं तसव्वुफ के मुतालिक वो इस किताब में है मौजूद, पहले भी मैंने इसमें से तालीम की थी। तो बहरहाल ये जो सिलसिला है बुज़ुर्गों का, समझाई बात, इसका मकसद क्या है, समझाई बात जी, तो हम सब जानते हैं कि इसका मकसद भी कोई कुरान और हदीस से अलग चीज़ नहीं है, समझाई बात, जैसे मदारिस से इलम मकसूद होता है जो साबित है, इसी तरह इस लाइन की मेहनत से भी निस्बत अल्लाह से ताल्लुक, मर्तबा एहसान का हासिल होना, अल्लाह का खौफ तकवा, ये चीज़ें हासिल होना जो मतलूब हैं, जो शरीयत से मतलूब, ये मकसूद है। ज़िक्र की लाइन की मेहनतें और मजलिस की लाइन की मेहनतें, इस मेहनत का मकसद भी शरीयत ही है, जो शरीयत का एक जुज़ है। उलमा जानते हैं कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात किए थे, बुखारी शरीफ में भी मौजूद हदीस, मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद, मशहूर हदीस की किताबों में, कि भाई मल ईमान, ईमान क्या है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसीर बयान की कि ये ईमान है। मल इस्लाम, इस्लाम क्या है, तो वो भी बताया, समझाई बात। फिर ईमान और इस्लाम के सिवा एक तीसरा सवाल किया ख़ास तौर पर, समझाई बात, मल एहसान, कि भाई एहसान क्या है, समझाई बात। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जवाब दिया, अंतबुद अल्लाह का अन्न का तरा फ़ैलम तकन तरा फ़ैन यक, कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया कि तुम उसको देख रहे हो, गोया के देख, आँखों से तो नहीं देख रहे, यानी इतना ध्यान हो, फ़ैलम तकन तरा, अगर तुम देखते नहीं हो, इतना ध्यान नसीब नहीं है तुम्हें, तो कम अज़ कम इतना ध्यान तो रखो कि फ़ैन न हो यक, कि वो अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो ये निस्बत याददाश्त, इसको कहते हैं निस्बत एहसान, निस्बत याददाश्त, ये निस्बत एहसान हमें हासिल हो जाए, یہ مقصد ہے جی. اعمال میں اخلاص آ جائیں, زندگی میں تقوی آ جائے, تو یہ ساری صفات جو مطلوب ہیں قرآن و حدیث سے وہ ہمارے اندر آ جائے, یہ اس محنت کا مقصد ہے. اور ماشاءاللہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے جو یہ محنت چلی ہے اور مختلف سلسلے چلے ہیں, سمجھے بات جی, ان کا تجربہ یہ ہے کہ یہ جو مقصد ہے یہ مقصد ان سلسلوں کے ذریعے سے حاصل ہوا. جیسے فقہ, فقہ کے اندر چار مسلک من جانب اللہ مقبول ہوئے, من جانب اللہ چار مسلک مشہور ہوئے فقہ کے اندر, حنبلی, شافعی اور حنفی, مالکی, سب جانتے ہیں. ان کی کتابوں کی تدوین ہوئی, مسائل سامنے آئے اور چاروں مسلک کے لوگ انہوں نے اس پر عمل کیا جی, اور آخرت میں کامیابی حاصل کی. کسی کو بھی ہم گمراہ نہیں کہتے, ہم حنفی ہیں, کسی شافعی کو ہم نہیں کہتے کہ وہ گمراہ ہے, کسی مالکی کو ہم گمراہ نہیں کہتے, اسی حنبلی کو. سب نے مسائل پر عمل کر کے, شریعت پر عمل کر کے اللہ کی رضا حاصل کی, آخرت میں جنت میں پہنچے. جیسے امام احمد بن حنبل, ان کے جو ہیں واقعات, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, ہم میں سے امام ابو حنیفہ کے شاگرد, ان کے حالات میں ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں فقہ پر عمل کر کے اللہ کی رضا مندی حاصل کی. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا, جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, حالات میں لکھا ہے, شامی میں بھی ہیں اور بخاری کی شروحات میں بھی ہیں, کہ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا, سمجھائی بات, کہ کیا معاملہ پیش آیا. یعنی روح ہماری اللہ کے دربار میں حاضر ہوتی ہے موت کے بعد, ہمارا یقین ہے. سمجھے, سورہ واقعہ میں ہم بڑھتے ہیں, حتی اذا بلغت الحلقوم, پڑھتے ہیں سمجھے, فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنۃ نعیم, و ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین, پڑھتے ہیں ہم سورہ واقعہ میں ہیں. تو بہرحال کسی نے خواب میں دیکھا, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا کہ وہاں کیا معاملہ پیش آیا, سمجھائی بات, تو کہا کہ اللہ کے سامنے مجھے حاضر کیا گیا, سمجھائی بات. اور پھر ادھر سے جی یہ کہا گیا کہ محمد, اگر جو اگر تمہارے ساتھ خیر منظور نہ ہوتی, یعنی عذاب دینا, اگر تمہارے ساتھ خیر منظور نہ ہوتی تو ہم تمہیں اپنے دین کا علم نہ عطا فرماتے. یہ واقعہ بخاری شریف کی شرح میں مفتی سعید صاحب نے لکھا ہے, من یرید اللہ بہ خیرن یفقیہ فی الدین, اس کے ذمن کسی کو دیکھنا ہو تحفۃ القاری میں یہ واقعہ لکھا ہے مفتی سعید صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ جی, من یرید اللہ بہ خیرن یفقیہ فی الدین, اس حدیث کے ماتحت کہ اللہ جسے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دین میں سمجھ عطا فرماتے ہیں. تو ادھر سے جواب ملا کہ اگر تمہارے ساتھ خیر نہ منظور ہوتی, من یرید اللہ بہ خیرن, تو ہم تمہیں دین کا علم نہ عطا فرماتے. اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوا کہ ان کو جنت میں لے جاؤ. سبحان, دیکھیے تو میں یہ کہہ رہا تھا, سمجھے, یہ سب راستے صحیح ہے. سمجھے, اگر غلط ہوتا تو امام محمد جنت میں کیسے پہنچتے؟ حنفیوں کا راستہ اگر غلط ہوتا تو امام محمد جنت میں کیسے پہنچتے؟ سمجھے بات, تو سب راستے چاروں فقہ, سمجھے بات, یہ قرآن و حدیث سے مستنبط ہے. سمجھائی بات, قرآن و حدیث ہی سے مستنبط, اور اس پر عمل کر کے جو ہیں جنت میں گئے. سمجھائی بات, امام شافعی کا مقام دیکھے جی, امام احمد بن حنبل کا مقام دیکھے, ہم यानी अंदाजा नहीं लगा सकते। बड़े बड़े अइमा जी, अल्लाह ताला सबको गरी के रहमत फरमाए और हमें अकीदत व मोहब्बत नसीब। मैं तलबा से कहा करता हूँ, देखिए बुखारी शरीफ इतनी मकबूल किताब, अब इसकी शारहीन की फहरिस्त देखिए आप, समझाई बात, शारहीन की फहरिस्त जी, सबसे बड़ी शरह फतहुल बारी है ना, इसके मुसन्निफ़ हैं हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी शाफ़ी, हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी शाफ़ी, समझाई बात, उम्दतुल क़ारी, समझाई बात, अल्लामा आइनी, ये हैं बड़े हनफ़ी, समझाई बात, आप देखें, समझाई बात, इबन बत्ताल, समझ बात, बुखारी की शरह इबन बत्ताल है, समझे, जब मौलाना यूनुस साहब को ये मिली है मदीना मुनव्वरा में, वहाँ तो बहुत खुश हुए, समझे, और जिन्होंने तलाश करके लाकर दी होगी उनको बहुत दुआएं दी हमारे सामने, पहले छपी नहीं थी, समझाई बात, तो इबन बत्ताल जो है मालिकी है, समझाई बात, और बुखारी की शरह है सब जानते हैं, समझाई बात। मैं कहना ये चाहता हूँ कि शारहीन इतने बड़े बुखारी के मुकल्लिदीन, देखिए मुझे ये साबित करना, क्या ये सारे गुमराह थे, हाफिज़ बिन हजर को कोई गुमराह कह सकता है, नऊज़ बिल्ला, अल्लामा आइनी को कोई गुमराह कह सकता है, नहीं बात, इबन बत्ताल को कोई गुमराह कह सकता है जी, इबन क़ुदामा हम्बली को कोई गुमराह कह सकता है, बहरहाल मुकल्लिदीन में भी बड़े बड़े उलमा हुए, समझाई बात, जो तकलीद के कायल थे, तो ये बात ज़रा आगे चली गई लेकिन ज़रूरी है ये कहनी कि भाई जैसे फ़िक़ा के अंदर चारों मसलक जो हैं क़ुरान और हदीस से मुस्तंबत हैं, समझाई बात, और अल्लाह के यहाँ मकबूल है, समझाई बात, फ़तावा रशीदिया में है, समझाई बात, आज ही मैंने मुताला किया फ़तावा रशीदिया में, इनको गुमराह कहने वाला खुद गुमराह है, समझाई बात, इन आइम्मा को गुमराह कहने वाला खुद गुमराह है, समझाई बात, समझे। बहरहाल इसी तरह तौबा के भी चार सिलसिले हैं, फ़तावा रशीदिया में सलूक में सवाल व जवाब, हमारे सिलसिले में है मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हमारा सिलसिला पहुंचता है हाजी इमदादुल्लाह साहब पर, समझाई बात, अब हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं इतनी बड़ी शख्सियत थी कि बड़े बड़े उलमा इनके हाथ पर बैत हुए थे, सबको मालूम है, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना कासिम साहब ननूतवी रहमतुल्लाह अलैह, हकीम उल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, समझाई बात, ये सब हाजी इमदादुल्लाह साहब से मुताल्लिक, तो हाजी इमदादुल्लाह साहब के बाद मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, समझे, और मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के बाद जो हैं मौलाना खलील अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, और मौलाना खलील अहमद साहब के बाद हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, और हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के बाद हमारे हजरत मुफ्ती महमूद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह। तो ये सिलसिला देखिए, सिलसिला है चिश्तिया, समझे, इसको कहते हैं, तो चारों सलासिल जो है इसको कहते हैं चारों सलासिल, समझे, सिलसिला है चिश्तिया जो मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचता है, समझे, हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह की किताब मशाइख़ चिश्त मौजूद है, मशाइख़ चिश्त, यानी इसमें जितने चिश्तिया सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं सबकी मुख्तसर मुख्तसर सवाने हैं, मुख्तसर मुख्तसर हालात, तो हमारा सिलसिला चिश्तिया कहलाता है। इसी तरह कदरिया, कादरिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तक वो पहुँचता है, समझे, ये भी बहुत बड़े सिलसिले के जी। इसी तरह सहरवर्दिया शेख सहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, और नक्शबंदिया जी ये तो मुजद्दद अल्फिशानी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचता है। तो तो मौलाना गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है कि चारों सिलसिले बरहक है, समझाई बात, और जो इस सिलसिले में तोबा करवाता है वो सही है, समझाई बात। तोबा पर लिखा है, किसी ने तोबा पर सवाल किया है, ये जो इन्होंने हजरत मौलाना गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के मसाइल उनके फतावा जो छपे हैं, समझाई बात, नए इसमें सुलूक व एहसान जी, इसका इसकी जो फसल है फतावा रशीदिया जो नई जो तरतीब है इसमें सुलूक व एहसान इसकी इसका जो फसल है इसमें कुछ सवालात ये तौबा के मुतालिक है, देखने के काबिल है, समझाई बात, वाकईतन इस्लाह के मुतालिक हैं, तौबा के मुतालिक। देखिए शेख इसको कहते हैं, समझाई बात, मैं तो हैरान हो गया। हजरत के मुरीदीन में से एक, वो बीच में बात आ गई, तो हजरत ने इसमें लिखा है कि चारों सिलसिले बरहक हैं, इसमें जो तौबा करवाता है सही है, इनको गुमराह कहने वाला खुद गुमराह है। तो इसमें एक बात कि भाई शेख इसको कहते हैं, हजरत मौलाना गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के कोई मुरीद शागिर आलिम थे, समझे, उन पर एक कैफियत तारीख हुई, उन पर एक कैफियत तारीख हुई और उन्होंने तय कर लिया कि अब ये पढ़ना पढ़ाना दी ये झंझट, समझे, ये भी बच्चे ये सब छोड़ना है, कहते नहीं मत, और उसने तय कर लिया कि मैं जंगल में निकल जाऊँगा, नहीं मत, शहर को छोड़ कर के और अल्लाह अल्लाह करता रहूँगा, समझाई बात। हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह को लिखा, समझाई बात, इसीलिए तो कहते हैं ना कि भाई शेख को अपने हालात लिखने चाहिए। हजरत ने अजीब जवाब दिया, हजरत ने जवाब दिया ये शैतानी वसवसा है, समझाई बात, ये शैतानी वसवसा है, नफ़े मुतादी को वो छोड़वाना चाहता है, आपका जो नफ़ा मुतादी है लोगों को जो फ़ायदा पहुँच रहा है ये छुड़वाना चाहता है, समझे, और नफ़े लाजिम, समझाई बात, हाँ, कि भाई आप बीवी बच्चों को छोड़ दोगे तो पहला तो ये कि बीवी बच्चे का हक छूटेगा, बीवी बच्चों का हक छूटेगा जो वाजिब है, समझे, तो फर्ज छूटेगा, समझाई बात, बीवी बच्चों का, आप कहते हैं कि बीवी बच्चों को छोड़ करके हमें निकल जाना है झंझट में, समझाई बात जी, तो कहा कि आप नफ़े मुतादी को छोड़ रहे हैं और इस्तिगराक को इख्तियार कर रहे हैं, इस्तिगराक मतलूब नहीं, मुझे तो ये सुनाना है, देखिए शेख इसको कहते, वो चाहते थे कि सारी झंझट छूटेगी तो एक कैफियत तारी होगी और हमेशा अल्लाह के साथ अल्लाह अल्लाह रहेगा, तो ये इस्तिगराक की कैफियत कहते हैं, समझाई बात, इसको इस्तिगराक कहते, तो कहा इस्तिगराक मतलूब नहीं है, समझते, इस्तेहजार मतलूब है, समझ में आ रहा है, इस सिलसिले में इस्तिगराक मतलूब नहीं है कि हम मजजूब हो जाएं, समझाई बात, बल्कि सालिक होना ये पसंद है, समझे, इस लाइन में दो होते हैं, एक सालिक और एक मजजूब, समझाई बात, तो जज्बे मकसूद नहीं, समझाई बात, कि हम जो हैं सारी चीज़ों को छोड़ करके अपने ऊपर जज्ब को तारी कर लें और एकदम इस्तिगराक हो जाए, समझाई बात, बाद बुजुर्गान दीन हुए हैं जिनको मजजूब कहा जाता है, लेकिन वो तो कुदरती चीज़ थी, वो कुदरती चीज़ थी, उन्होंने तलब नहीं किया था, बाज़ों ने तलब नहीं किया था, उन पर जज्ब तारी रहता था, समझाई बात, इतना जज्ब तारी रहता था, वो कुदरती था, बनावटी नहीं था, समझाई बात, वो जज्ब वो कुदरती था, इतना इस्तिगराक तारी रहता था, समझाई बात, कि इनको मुतनब्बे करना पड़ता था, समझाई बात। मिर्ज़ा जाना जान रहमतुल्लाह अलैह वगैरह बाज़ हज़रात थे, समझाई बात, जिन पर इस्तिगराक की कैफियत रहती थी, समझाई बात। तो हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे तो ये सुनाना है कि शेख इसको कहते, कहा कि नहीं आपको इजाज़त नहीं आ रही, समझाई बात, आप पढ़ने पढ़ाने में मशगूल रहे, समझाई बात, ये नफ़े मुतादी हैं, अल्लाह की मखलूक को नफ़ा होगा, समझे, और इसी में नस्बत जो है हमारी कभी होती रहेगी, इसी में नस्बत हमारी कवि होती रहेगी, वो समझाई बात जी, इस्तिगराक ये मतलूब नहीं है, समझाई बात। तो बहरहाल इसमें चंद सवालात हैं, खास तौर पर तौबा के बारे में सुनाई बात, तौबा की। भाई तौबा किसको कहते हैं? तौबतुन नसुहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसुहा था, ये ईमान वालो अल्लाह की तरफ खालिस तौबा करो, सुनाई बात। तो हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने इसको समझाया है कि भाई तौबतन नसुहा किसको कहते हैं, सुनाई बात। तो हमारे ये सिलसिले, चारों सिलसिले जो हैं, मैं ये कह रहा था, ये बरहक हैं और इसमें तौबा के तरीके हैं जी, और अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता दिखाया जाता है, ये नहीं बात जो मतलूब है। तो आज की मजलिस में असल में मुझे तो तौबा के मुतालिक कहना है, समझाई बात। खुद मुझे बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह नफ़ा हुआ, आप लोगों को भी नफ़ा हो जाए। ये फतावा रशीदिया में जहाँ सुलूक व एहसान के सवालात हैं, इसमें चंद सवालात तौबा के मुतालिक, भाई तौबा किस कहते किसको है, समझे? क्यों? इसलिए कि हमारी जो ये बैत है, ये बैत का नाम ही बैत तौबा है, ये जो हम बैत करते हैं इसका नाम ही बैत तौबा है, या दूसरे नंबर पर बैत सुलूक है, बैत तौबा है या बैत सुलूक, सच्ची तौबा करना शेख के हाथ पर, जो साबित हैं जी, कुरान से भी साबित हैं, अहादीस से भी साबित हैं, सुनिए बात। और जिक्र के बारे में मुझे ख़ास तौर पर कहना है कि भाई ज़्यादा ना हो सके, ज़्यादा ना, जिक्र से अल्लाह का ताल्लुक बाकी रहता है, पांच वक्त की नमाज तो है ही। एक ख़ास वजीफ़ा जो बुखारी की हदीस से साबित है, आज मैं बता देता हूँ, हमारा तो अमल है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई ये 100 मरतबा तीसरा कलमा नहीं पढ़ सकता, कोई पढ़े तो बहुत अच्छा है, हमारे मामूलात में है, यानी हमारे मशाइक के, अगर ये नहीं कर सकता तो कम से कम फजर की नमाज के बाद 10 मरतबा चौथा कलमा पढ़ ले, बुखारी की हदीस से साबित है, सुनिए बात। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क वलहु الحمد وهو على كل شيء قدير, बुखारी की हदीस से साबित है। और एक अरब गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है, कितना बड़ा सवाब, अरब गुलाम आज़ाद करने का सवाब जी, और भी सवाब लिखा है। और अगर कोई 100 मरतबा इसको पढ़े, बुखारी की हदीसें ऊपर की, ये नीचे की हदीस मैंने बयान की, ये नीचे की हदीस और इसी से ऊपर बुखारी की हदीस, इसी कलमे के मुतालिक, समझाई बात। ये तहलील के बाब में इमाम बुखारी ने फ़ज़ाइल ज़िक्र में बाबु तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, इसमें ज़िक्र की, अगर 100 मरतबा पढ़ें, समझाई बात, फजर बाद दिन में, तो 10 अरब गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है, बुखारी की हदीस याद रहे। तो अगर कोई 100 मरतबा पढ़ लें तो नूर नला नूर चौथा कलिमा, समझे? और अगर 100 मरतबा नहीं पढ़ सकता तो कम से कम 10 मरतबा पढ़ लें, नहीं बात। और इसी तरह तस्बीह फातिमा में हर मजलिस में कहता हूँ कि भाई कुछ नहीं हो सकता, तो ये 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह, ये पढ़ लिया करो, बुखारी की हदीस से साबित। और सोते वक्त अब क्या चाहिए सबूत हमें, नहीं मत, शैतान बहुत बड़ा दुश्मन, ये सारे फजल के वज़ाइफ फ़ज़ाइल ज़ईफ़ हदीस, कहाँ ज़ईफ़ हदीस, बुखारी से बढ़कर के कौन सी किताब सही हदीस की, समझाई बात। तो ये तस्वीर फातिमा भी बुखारी की हदीस से साबित, समझाई बात, पांचों नमाज के बाद और सोने से पहले। तो बहरहाल ये तो बीच में बात आ गई, असल तो तौबा के मुतालिक मुझे कहना था, इसलिए कि ज़िंदगी का भरोसा नहीं, समझे, हम रात दिन सुन रहे हैं, समझे बात। पहले तो सुनते थे कि बड़ी उम्र के इनकी वफात होती है ना, बूढ़े बूढ़े, या कि कोई बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला हो तो उसकी वफात, समझे बात, वो तो तौबा कर लेगा, समझे बात। लेकिन अब तो भाई दोस्तों सुन रहे हैं कि जवान सुनाई बात चलते फिरते वो अल्लाह के यहाँ जा रहे हैं, सुन रहे कि नहीं, सुनाई बात जवान बिल्कुल, यानी जिनके मुतालिक तसव्वुर नहीं हो सकता कि 10 मिनट के बाद इसकी मौत आएगी, सुनाई बात ऐसे जवान मर्द औरतें भी जा रही, तो फिर मौत का तो भरोसा नहीं है, सुनाई बात। तो हमें हमेशा सच्ची तौबा करनी चाहिए, सच्ची तौबा करनी चाहिए, समझे। यही ये जो है सुना रहा था मैं फतावा रशीदिया का, इसमें अजीब बात, यही बात, उसमें किसी ने सवाल किया है कि फुला आदमी तौबा भी करता है, समझे यही बात, और थोड़े दिन जो है वो ठीक रहता है, यही बात, और उसके बाद वैसा ही जैसा पहले था, यही बात। तो ये तो यानी गोया के रियाकार मालूम होता है कि सबके सामने तो तौबा कर ली, नहीं बात, लेकिन फिर थोड़े दिन के बाद वैसा ही फिर, नहीं बात। तो हजरत ने अजीब इसलाह की, साहिल की, साहिल की भी इसलाह की, नहीं बात, कि भाई सुए जन में हमें मुब्तला नहीं रहना चाहिए, हमें क्या मालूम कि इसने सच्ची तौबा ना की, नहीं, इसने सच्ची तौबा नहीं की हम नहीं कह सकते, इसने तौबा की फिर इसकी तौबा टूट गई, फिर तौबा की फिर तौबा टूट गई, तो इसका मतलब हम ये फैसला नहीं कर सकते कि ये रियाकार हैं, नहीं बात, इसने सच्ची तौबा नहीं की थी, इसलिए कि दिल का हाल तो अल्लाह को मालूम है, ये सुए जन है, इसलाह की हजरत ने फरमाई। और फिर अजीब बात फरमाई कि सच्ची तौबा आदमी करे, सच्ची वाकईतन सच्ची तौबतुन नसुहा किसको कहते हैं, तौबतुन नसुहा इसको कहते हैं कि गुज़िश्ता गुनाहों पर दिल से नदामत, गुज़िश्ता गुनाहों पर दिल से नदामत, और आइंदा न करने का पक्का इरादा, आइंदा न करने का पक्का इरादा, और हाल में इसको छोड़ दे, और हाल में इसको छोड़ दे, जो गुनाह कर रहे हैं उसको हाल में छोड़ दे, ये हुई पक्की तौबा, सुनाई बात। अब फिर उसके बाद चूंकि हमारे साथ नफ्स हैं, शैतान हैं, सुनाई बात, फिर अगर तौबा टूट गई, सुनाई बात, तो मायूस ना हो जी। हजरत ने अजीब हदीस शरीफ लिख करके समझाया, नहीं बात, तिर्मिजी शरीफ की है, मा असर मनिस्तगफर, नहीं बात, मा असर मनिस्तगफर वलौ फअल फिल यौम 70 मरतन औ कमा قال अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कुरान शरीफ की उस आयत की तरफ इशारा, पहले हजरत ने कुरान शरीफ की आयत लिखी, नहीं बात जी, जो है वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा समावात वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तकीन, यानी अल्लज़ीन युन्फ़िकून फिस सर्राइ वद्दर्राइ वल काज़िमीन अल ग़ैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिन। फिर आगे क्या है, वल्लज़ीन इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन खुला गुना, والذين إذا فعلوا فاحش أو ظلموا أنفسهم अपने ऊपर जुलम कर लिया यानी गुना, ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم, समझे बात। फिर आगे क्या है, ومن يغفر الذنوب إلا, फिर आगे ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون, हाँ इस्तिगफार के बाद इसरार न किया, ولم يصروا على जी। तो यहाँ तो कुरान में तो ये कैद लगाई कि मगफिरत उस वक्त होगी कि जब इसरार न किया हो, वलम युसिर्रु अला मा फ़अल, तो फिर हैं उलाई के जज़ाउहुम मगफिरत, समझाई बात। तो यहाँ तो ये कि तौबा की और टूट गई, तौबा की और टूट गई, ये तो इसरार हुआ, नहीं बात, तौबा की और टूट गई, ये तो इसरार हुआ। और कुरान में जो वादा है वो तो अदम इसरार पर, कुरान में जो वादा है वो तो अदब ही इसरार, बार बार न करें वलम युसिर। तो फिर यहाँ तसल्ली दी हजरत ने ये हदीस नकल करके, यहाँ हजरत मौलाना गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने यह हदीस नकल करके तसल्ली दी कि अगर पक्की तोबा की है, शर्त क्या है, पक्की तोबा की है और फिर तोबा टूट गई और फिर इस्तिग़फार किया तो यह इसरार में दाखिल नहीं। और तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस लिखी, देख लेना किताबुद दावात में है यह हदीस, किताबुद दावात में, समझे, हदीस मा असर मन इस्तग़फ़रा, इससे बड़ी उम्मीद बनती है, समझे। हम सभी जो हमारी तोबा हम सबको मालूम है, समझे। वो एक शायर कहता है, हमारे उस्ताद सुना देते ये शेर हमारी तोबा के मुतालिक, कि हमारी तोबा कैसी होती है। वो शायर कहता है कि तोबा मेरी जाम शिकन, समझे, वो शराबी होगा, समझे बात, तो वो कहता है तोबा मेरी जाम शिकन जी, जाम मेरा तोबा शिकन, समझे बात, दूर तक ढेर है टूटे हुए पैमानों का, समझ में आ रहा है, समझे। वो कहता है पहले कि मैंने तोबा करके शराब का जाम तोड़ दिया, समझे बात, तोबा करके शराब का ग्लास तोड़ दिया, समझे, फिर जोश आया, समझ आई बात, शराब सामने आई तो फिर मैंने तोबा तोड़ी, कहते हैं समझ आई बात, तोबा मेरी जाम शिकन, जाम मेरा तोबा शिकन, समझ आई बात। अब नतीजा क्या निकला कि टूटे हुए पैमानों का ढेर, समझ आई बात, कि कभी ग्लास टूटा तो उसके सारे ग्लास, समझ आई बात, और कभी तोबा डूटी तो उसके सारे, और डस्टबिन भर गया, कहते हैं, समझे, डस्टबिन भर गया, समझ आई बात, कि कभी तोबा टूटी और कभी जाम टूटा तो डस्टबिन भर गया, क्या हमारी ये तोबा, हमारे उस्ताद सुनाते थे कि हमारी उस तोबा ऐसी होती है, समझ आई बात। तो बहरहाल इसलिए कभी जो है शैतान वसवसा अंदाजी भी करता है कि तुम्हारी क्या तोबा, समझ आई बात, कि तुम तो तोबा तोड़ते रहते हैं। और कुरान तो ये कैद लगाता है, क्या वलम युसिर्रु अला मा फालू वहुम यालम। तो हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर तसल्ली दी और किसी इमाम साहब की शिकायत की थी किसी ने, समझ आई बात, किसी इमाम साहब की शिकायत की थी कि हमारे इमाम साहब ऐसे हैं, समझ आई बात, कि तोबा भी करते हैं और फिर सिनेमा में जाते हैं, समझ आई बात। अभी अब तो वीडियो आ गया, पहले सिनेमा में जाते थे ना, समझ आई बात, तो अब किसी ने शिकायत की होगी कि हमारे इमाम साहब तो ऐसे हैं, तोबा भी करते हैं और फिर, तो ये तो फासिक हो गए और फासिक के पीछे इमामत मकरूह है, हज़रत गंगोई को पूछा है, समझ आई बात, देखिए तो फासिक हो गए और फासिक की इमामत तो मकरूह है, समझ आई बात। तो फिर हज़रत गंगोई ने जवाब दिया है कि भाई सुए जन में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है, जब वो सच्ची तोबा कर रहे हैं, समझ आई बात, गरचे इसरार कर रहे हैं लेकिन फिर सच्ची तोबा कर रहे हैं, समझ आई बात, तो अब ये फासिक नहीं हुए। देखा अल्लाह अकबर, हमारे हजरात का ज़र्फ़ देखिए, सीना देखिए, समझे। हाँ अगर ये जो हैं जानबूझकर गुनाह कर रहे हैं, हाँ फिर लिखा है आगे दूसरे सवाल के जवाब में कि ये जानबूझकर कर रहे हैं, समझ आई बात, तो फिर ये फासिक हुए। फिर दूसरे सवाल के जवाब में हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह लिखा है कि अगर ये जानबूझकर कर रहे हैं गुनाह, समझ आई बात, कि दाढ़ी एक मरतबा शेव करवाई, थोड़े दिन रखी और फिर वही, और हम इमामत भी करवा रहे हैं, समझ आई बात, तो अब ये तो फासिक हो गए फिर, समझ आई बात, तो ऐसे कोई इमाम बनाना मकरूह है, फिर लिखा अल्लामा शामी ने लिखा है। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि भाई मशायख़ से ताल्लुक़ रखने में बड़ी हिफाजत होती है। आदमी वैसे घर पर भी तौबा कर सकता है, घर पर भी तौबा कर सकता है, समझ आई बात, तौबा तो फ़र्ज़ है, गुनाहों से तौबा फ़र्ज़, हजरत ने लिखा है, हजरत गंगोई रहमतुल्लाह ने लिखा है कि गुनाहों से तौबा फ़र्ज़ है, समझ आई बात, गुनाह से बचना फ़र्ज़, तौबा भी फ़र्ज़, समझ आई बात, तो घर पर भी कर सकता है लेकिन मशाइख के हाथ पर जी गोया मशाइक को शाहिद बना रहा है, यही बात, अपनी तौबा का शाहिद बना रहा है। तो फिर इसकी बरकत से आदमी गुनाह से बच जाएगा। याद रखें, मशाइक के हाथ पर तौबा करने से फायदा क्या होता है? तजुर्बा है बहुत सों का, हजारों का, कि मशाइक के हाथ पर तौबा की, उसके बाद गुनाह के करीब भी हुआ लेकिन गुनाह में मुब्तला नहीं हुआ। गुनाह के करीब भी हो जाए लेकिन मशाइक के हाथ पर तौबा करने से फिर इसकी बरकत से वो गुनाह में मुब्तला नहीं होता। और कुरान ने कैद लगाई है, इन तज तनबू कबाइर मा तुनहून अन्हु नुकफ्फिर अन्हुम सय्यिआतिहिम, नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिहिम। ये हमारे छोटे छोटे गुनाह माफ़ इबादतों से कब होंगे? तो कुरान ने कैद लगाई, समझाई मत, इन तज तनबू कबाइर मा तुनहून अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिहिम, अगर तुम कबाइर से बचोगे तो फिर हम तुम्हारे छोटे गुनाह माफ़ कर देंगे। यहाँ हाशिया देखने के काबिल है मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी का, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी ने लंबा हाशिया लिखा है इस आयत पर कि इस आयत का मतलब क्या है, समझाई बात। तो बहरहाल कबाइर से, बड़े गुनाहों से बचना ज़रूरी है भाई दोस्तों, फितने का दौर है, समझाई बात। आँखों की हिफाजत, कान की हिफाजत, सीनों की हिफाजत, यही बात, कबाइर से बचना ज़रूरी है। वरना अगर कबाइर से नहीं बचे और मौत से पहले सच्ची तौबा नहीं की तो मसला मुश्किल है भाई दोस्तों, मुश्किल है मसला, समझाई बात। कबाइर यानी बड़े गुनाहों से नहीं बचे और मौत से पहले पहले सच्ची तौबा नहीं की तो फिर या तो दुनिया में तकलीफ़ आती है, समझाई बात, या फिर मौत के वक्त, सकरात के वक्त, फिर उसके आगे। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, मौत से पहले हमें सच्ची पक्की तौबा नसीब फरमाए। तो ये मशाइख से ताल्लुक, बैत का ताल्लुक, जी जी, ये बैत तौबा हैं, बैत सुलूक हैं, बहुत बड़ी खिदमत है ये भाई दोस्तों। ये बुज़ुर्गों का सिलसिला, ये इंसानों पर रहमत है। कहते तो मेरे तो यानी ये मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की फतावा का जब मैंने मुताला किया, मैं दिल से कहता हूँ कि ये हमारे मशाइख का उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान है कि कितनों ने सच्ची तौबा की होगी। यानी इन बुज़ुर्गों के हाथ पर बैत होने के बाद कितनों ने सच्ची तौबा की होगी और आखिरत के अजाब से बचे होंगे, कितनों ने सच्ची। तो हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर जब बैत होते थे हमने आँखों से देखे, रमज़ान में आँखों से देखे, सैकड़ों आदमी बैत करते थे। और बैत के अल्फाज क्या होते थे, बैत के अल्फाज क्या होते, वही जो मैं अभी पढ़ कर के इंशाल्लाह सुनाऊँगा, मुख्तसर, अब वक्त भी नहीं। यही जी, तौबा की मैंने कुफ्र से, शिर्क से, सबसे पहले समझाई बात, जीना से, गीबत से, चोरी से, हज़रत शेख यही अल्फाज बुलाते थे, समझाई बात। यानी सच्ची तौबा, समझाई बात। और उसके बाद इन मशाइख के हाथ पर बैत करने के बाद कितने माशाअल्लाह इस पर कायम रहे और उन्होंने अपनी आखिरत को बनाया, कोई मामूली खिदमत है, समझाई बात। ये मैंने इसलिए ज़रा तफसील से सुना दिया कि हम इस सिलसिले को बेकार न समझें, बेकार न समझें, समझाई बात। जैसे मदरसे का सिलसिला, ये अपनी जगह पर, सर आँखों पर, समझाई बात, हमारे मशाइख ने किताबें पढ़ाई भी, लिखी भी, सब कुछ, समझाई बात। और उसके साथ साथ ये भी रखा कि कुछ जिक्र करते थे जी, अल्लाह का खौफ हो, खशियत हो जी, अल्लाह से ताल्लुक़ हो, ये भी ज़रूरी हैं। एक सवाल जवाब सिर्फ पढ़ देता हूँ इंशाल्लाह। ये बैत का बयान, बैत का सबूत कुरान और हदीस से, ये साहिल हजरत मुफ्ती महमूद साहब से सवाल कर रहा है कि सवाल, बंदा एक बुजुर्ग से मुरीद बैत है। पहले ये हाल था कि कभी नमाज पढ़ी कभी नहीं पढ़ी, ज़ुबान को गाली देने की आदत थी, झूठ कसरत से बोलता था, झूठी कसमें बहुत खाता था, कुरान शरीफ की तिलावत सिर्फ रमज़ान में कभी कर लेता था, आमदनी में हराम हलाल की कुछ तमीज़ नहीं करता था, बड़ों बूढ़ों का अदब का लिहाज नहीं करता था, पड़ोसियों से अक्सर लड़ाई और बदसलूकी होती थी। ये साहिल ने लिखा पहले नहीं बात। बैत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सब खताओं और गुनाहों की आहिस्ता आहिस्ता इस्लाह हुई, उन्होंने सच्ची तौबा की, आहिस्ता आहिस्ता इस्लाह हुई, जिसका एहसास मेरे मिलने वालों को भी हुआ। नमाज की पाबंदी नसीब हुई और ऐसा दिल लगता है जैसे बिल्कुल अल्लाह ताला के सामने हाजिर है और अपने पीर साहब की खिदमत में हाजिरी के वक्त गुज़िश्ता गुनाह याद आकर रोना आता है और तौबा की तौफीक होती है। बंदा समझता है कि ये सब बैत की बरकत से हासिल हुआ, ये खुद साहिल कहता है। एक साहब ने कहा, अब चूंकि कौन से भी है ना, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी यवसवसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, कि कभी वसवसा अंदाजी जैसे शैतान करता है ना, इसी तरह लोग भी करते हैं। नहीं बस, एक साहब ने कहा कि ये पीर मुरीदी तो जोगियों और बुद्धिस्ट मजहब वालों का तरीका है। नहीं बस, कि वो ईजाबी काम कराते हैं, सलबी वो ईजाबी काम कम करवाते हैं, सलबी काम ज़्यादा करवाते हैं। यानी ये बुद्धिस्ट और जोगियों का तरीका है कि करने के काम कम करवाते हैं, करने के काम कम करवाते हैं और सलबी काम ज़्यादा करवाते हैं, यानी न करने के। नहीं बात, मसलन गुनाह ना करो, बल्कि उनके यहाँ सब सलबी ही सलबी तालीम है कि फला काम नहीं करना, यानी न करने के काम करवाते हैं। ये जोगी लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, इसकी वजह से एक कुव्वत हासिल हो जाती है, कहते हैं। तो कहा ये तो जोगियों का तरीका है, समझ नहीं बात। ये उसके दोस्त ने कहा, बस आदमी को उज़्वे मुअत्तल और मफलूज बनाकर रख देते हैं। समझे, ये बुद्धिस्ट लोग वगैरह जो हैं साधु लोग, इस किस्म की मेहनत करवाते हैं और इंसान को बिल्कुल मफलूज बूझे अकफश कर देते हैं। समझे भाई, गरज इस तरीके में कोई खूबी नहीं और ये किताबो सुन्नत से साबित भी नहीं। फिर उनके दोस्त ने ये भी कहा कि ये जो तुम्हारा तसव्वुफ का तरीका है, समझाई बात, ये किताबो सुन्नत से साबित भी नहीं। समझे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस्लाम की बैत करवाते थे, इस्लाम की बैत। देखिए दलील, समझे, ओके, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो इस्लाम की बैत साबित है कि वो गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाते थे। बात, बंदा के पास इसका जवाब नहीं, समझे। अब वो बेचारा जिसकी इस्लाह हुई थी, अब वो आलिम नहीं होगा, समझे, तो वो कह रहा है कि बंदे के पास इसका जवाब नहीं। समझाई बात, मुरीद होने का फ़ायदा तो मैं महसूस कर रहा हूँ, मुरीद होने का फ़ायदा तुम्हें महसूस कर रहा, लेकिन इन साहब के जवाब देने का मेरे पास कोई सामान नहीं। आपसे गुजारिश है कि जवाब इनायत फरमाए। अंदेशा यह है कि इन साहब का एतराज़ दिल में जम जाए तो नुकसान पहुँचेगा। देखिए, कभी बाज़ मरतबा ऐसे इश्कालात से नुकसान भी होता है, इसलिए हर एक की बात देखना नहीं चाहिए। समझ आई बात? इंटरनेट पर हर एक की बात नहीं देखना चाहिए। बाज़ मरतबा इस्लाम के ख़िलाफ़ अगेंस्ट कोई बात लिखी हुई होती हैं, हमारे पास इसका जवाब नहीं होता है तो वो दिल में जम जाता है। समझ आई बात? इसलिए जो साफ साफ बातें होती हैं, देखना हो तो वो देखें। समझाए बात? जवाब देखिए, हामिदों व मुसल्ले हज़रत तो बहरहाल हज़रत मुफ्ती साहब ने जवाब दिया कि इन साहब से अर्ज़ करें कि वो सूरे फतह पढ़ें। इसमें इरशाद है, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, इन्नल्लज़ीन युबायिउनक इन्नमा युबायिउनल्लाह, कि बेशक जो आपसे बैत करते हैं वो अल्लाह से बैत करते हैं। सूरे फतह में है। फिर चंद आयात के बाद तीसरे रुकू में हैं, लक़द रज़ी अल्लाह अनिल मुमिनीन इज़ युबायिउनक तहत अश्शजरा, अल्लाह राज़ी हो गया उन मुमिनीन से जो आपसे बैत कर रहे थे दरख्त के नीचे। यही सूरे फतह। सुनिए बात, यहाँ मुमिनीन बल्कि आला दर्जे के सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से बैत ली गई, जिनमें वो हजरात भी हैं जो मक्का मुकर्रमा में इस्लाम ला चुके थे, समझे, और दीन इस्लाम के खातिर बड़ी तकलीफ़ें उठा चुके थे, और उनका शुमार महाजरीन अव्वलीन में से है, और गजवात में हज़रत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक भी हुए थे। तो ये बैत इस्लाम कबूल करने के लिए नहीं थी जी, इस्लाम तो ये बहुत पहले से ला चुके थे। हज़रत ने कहा, देखिए, लक़द रज़ी अल्लाह अनिल मुमिनीन इज़ युबायिउनक तहत शजरा, ये इस्लाम की बैत नहीं थी। समझाई बात जी? ये तो पहले से इस्लाम ला चुके थे। समझाई बात? और आगे सूरे मुमतहिना में जिसमें इरशाद हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, या अय्युहन नबी इज़ा जाअकल मुमिनातु युबायिउनका अला अल्ला युश्रिकन बिल्लाहि शैआ वला यस्रिकन वला यज़नीन वला यक्तुलन औलादहुन वला यातीन बिबुहतानि यफ्तरीनहु बैन अयदीहिन व अर्जुलिहिन ولا يعصينك في معروف فبعهن واستغفر لهن الله الآية। देखिए, यानी इसमें बैत, इस आयत शरीफा में अल्लाह ताला ने छः चीज़ों पर बैत लेने का हुक्म फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, छः चीज़। अब आप उलमा हैं, इसका तर्जुमा खुद देख लेना। छः चीज़ों पर जी बैत लेने का हुक्म फरमाया है। नहीं बात, और ये सब सलबी हैं। वो कहते हैं कि ये सलबी जोगियों का तरीका, तो हजरत फरमाते हैं ये सब सलबी हैं, यानी न करने की है। तर्जुमा देखे, उनसे आप बैत लीजिए इस बात पर कि अल्लाह के साथ शरीक न ठहराएगी। तो अब ये ईजाबी हैं या सलबी हैं? शिर्क नहीं करेगी। फिर आगे जी, वला यसरिक न, चोरी नहीं करेगी। तो अब ये ईजाबी है सलबी है? कहते हैं चोरी नहीं करेगी, सलबी है ये, तो समझाए बात। और इसी तरह औलाद को कत्ल नहीं करेगी, ये भी सलबी, समझाई बात। इसी तरह बहतान नहीं बांधेगी, समझाई बात, ये भी सलबी। और आपकी नाफरमानी नहीं करेगी, ये भी सलबी, समझाइए बात। तो ये सलबी तरीके पर बैत लेना, ये ये जोगियों का तरीका कहाँ हुआ, ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हुआ, कुरान और हदीस का समझाएगा। इसके अलावा बास सहाबा से और भी ख़ास चीज़ों पर बैत लेना साबित है, समझे बात। बुजुर्गान दीन जो बैत लेते हैं वो जोगियों और बुत मजहब वालों का तरीका नहीं है, बल्कि हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं जी। चंद कबाइर से यानि बड़े गुनाहों से सराहतन तोबा करवाते हैं और हर नाफरमानी से रुक कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताअत पर आमादा करते हैं, जैसा कि हदीस शरीफ में साफ मौजूद है। ऊपर आयत आप हजरात ने सुनी, अब बुखारी ही की हदीस, ये बुखारी की हदीस। हज़रत उबादा बिन सामित रदी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हौलहु इसाबतुम मिन सहाबिही, आपके अतराफ में सहाबा बैठे थे। क्या फरमाया, बायउनी, मुझसे बैत करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमा रहे हैं, सुनिए मैं, अल्लाह तुशरिको अला अल्ला तुशरिको बिल्लाहि शैआ, ये वला तसरिको वला तजनु वला तख्तलु औलादकुम। वही जो ऊपर औरतों से बैत ली थी वही अल्फाज इसमें भी, समझाई बात। छः चीज़ों पर बैत ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, समझाई बात। फिर फरमाया कि जो इसको पूरा करेगा उसका सवाब अल्लाह के पास होगा, और अगर किसी ने इन गुनाहों का इर्तिकाब किया और फिर उसको दुनिया में सज़ा दी गई तो वो इसके लिए कफ़ारा है। और किसी ने इर्तिकाब किया और दुनिया में उसको सज़ा नहीं मिली इन गुनाह की, तो फिर वो अल्लाह के हवाले है। यानी ये गुनाह जिस पर बैत की दोबारा अगर किए और उस पर दुनिया में अगर सज़ा नहीं मिली, समझाई बात, तो फिर वो अल्लाह के हवाले है। इन शाह अफा अन हो व इन शाह आकबा हो, अगर चाहे तो अल्लाह इसको माफ़ कर दें और अगर चाहे तो अल्लाह इसको सजा दें। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ भाई दोस्तों, कबाइर से बचना बहुत ज़रूरी है, और अगर हो जाए या हो गया हो तो पक्की तौबा करना बहुत ज़रूरी है, समझाई मत। इन शाह अफा अन हो, अगर चाहे तो अल्लाह माफ़ करे और अगर चाहे तो सज़ा दे, समझाई बात। उबादा बिन साबिन फरमाते हैं, फबायअनाहु अला ज़ालिक, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस पर क्या की, बैत की, समझे। मुत्तफ़क़ुन अलैह, ये रिवायत मुत्तफ़क़ अलैह। बहरहाल आज की मजलिस का खुलासा ये है कि भाई हम मौत से पहले पहले सच्ची तौबा करें, तौबतन नसूहा, और बैत होने का मकसद भी यही है, समझे, कि हम सच्ची तौबा करें और अपनी ज़िंदगी का रुख बदलें, अपनी ज़िंदगी का रुख बदलें और थोड़ा थोड़ा जिक्र करें, ज़्यादा ना हो तो थोड़ा, इससे कल्ब में एक रोशनी रहती है दिल में। तो हम तो बहुत मामूली वजीफ़ा बता रहे हैं, समझे ईमान जी, कि भाई चौथा कलमा 10 मरतबा पढ़ लें या 100 मरतबा, या सुबहान अल्लाह बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम, ये 100 मरतबा पढ़ लें, या तीसरा कलमा पढ़ लें, दरूद शरीफ की एक तस्बीह पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह की पढ़ लें, सुबह में यासीन शरीफ पढ़ लें। हाफिज लोग तो पढ़ लेते हैं ज़ुबानी, कल ही तो सुना था ना कि यासीन शरीफ में कितने हरूफ हैं, कितने सवाब, कितना सवाब मिल जाए। फजर बाद यासीन शरीफ पढ़ लेंगे, और इसी तरह सोने से पहले सूरह तबारकल्लज़ी पढ़ लें, कब्र का अज़ाब नहीं होता, सोने से सूरह वाकिया पढ़े तो रिस्क में बरकत होती है, मगरिब के बाद सूरह वाकिया पढ़े तो रिस्क में बरकत होती है। आज जो है सब माशाल्लाह जॉब की वजह से परेशान सब, और इसी तरह सूरह कहफ जुमा के दिन पढ़ लें, समझे बात। पूरी सूरह कहफ न पढ़ सके, पूरी सूरह कहफ तो शुरू की 10 आयतें और अखीर की 10 आयतें, शुरू की 10 आयतें और अखीर की 10 आयतें जुमा के दिन पढ़ लिया करें, फितनों से हिफाजत होगी, फितनों से, और ख़ास तौर पर दज्जाल के फितने से। जो आदमी सूरह कहफ पढ़ेगा हर जुमा को, तो दज्जाल के फितने से इंशाल्लाह वो महफूज रहेगा। और आज तो दज्जाजिला बहुत सही बात, जो ईमान को ख़त्म करने के लिए, और फितने अजीब अजीब। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमा, हमें सच्ची पक्की तौबा नसीब फरमा, अपने मर्जियात पर चलने की तौफीक अता फरमा। दुआओं का अहतमाम करें, अल्लाह से खुद मांगे। मैंने पहली मजलिस में भी कहा था, अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक्वाहा, अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक्वाहा, अल्लाह से खुद मांगे। वज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्का, अंत वलीयुहा व मौलाहा, समझे, अल्लाह ही से मांगे। अल्लाहुम्मा ताहिर कल्बी मिनन निफाक व अमली मिनर रिया व लिसानी मिनल कज़िब व आईनी मिनल खयाना इन्नक तअलमु खाइनतल अय्युन। और हिज़्बुल आज़म अगर पढ़ने का वजीफ़ा रखे तो माशाअल्लाह उसमें सारी दुआएं, हिज़्बुल आज़म अगर कोई पढ़ सके तो। अल्लाह ताला हमें तौफीक नसीब फरमाए, हम सब की इस्लाह फरमाए, और मौत से पहले पहले सच्ची तौबा नसीब फरमाए, अपने अपने वक्त पर जो है हुस्न खात्मा नसीब फरमाए, जन्नत में दाखिला नसीब फरमाए, जहन्नम से बचाए, अपनी नाराज़गी से बचाए, हमारे लिए भी दुआ करें सेहत व आफियत के लिए। अब माशाअल्लाह बुज़ुर्गान दीन की मजलिस हैं, मुख्तसर दुआ भी कर लेते हैं। जज़ाकुमुल्लाह, आप तशरीफ़ लाएँ, ज़हमत उठा करके यहाँ पर, और मजलिस को रौनक बख्शी हमारा आना, और साथियों ने जो खिदमत की, जिन हजरात ने जमा होने के लिए, मेहमानी के लिए, अल्लाह सबकी खिदमत को भी कबूल फरमाए, और बार बार यहाँ जमा होना नसीब फरमाए। पहले दुआ कर लेते हैं। اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد ولك الشكر على الإيمان. اللهم لك الحمد ولك الشكر على الإيمان. اللهم لك الحمد ولك الشكر على القرآن. اللهم لك الحمد ولك الشكر على النعمة كلها. يا الله تونے بہت ساری يا الله نعمتیں ہمیں نصیب فرما رکھی ہیں, उन सब नेमतों में ईमान है, इस्लाम है, कुरान है, इल्म है, अमल है, अपना ताल्लुक है, या अल्लाह बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। या अल्लाह इनमें बरकत नसीब फरमा, इनमें बरकत नसीब फरमा, हमें महरूम न फरमा, अपना ताल्लुक ज़्यादा से ज़्यादा नसीब फरमा। या अल्लाह अपनी मोहब्बत नसीब फरमा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमा, इत्तिबाए सुन्नत नसीब फरमा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत खासा नसीब फरमा, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखला नसीब फरमा, अपनी रज़ा अपना दीदार नसीब फरमा, जहन्नम उसके अजाब से हमारी हिफाजत, मौत के बाद की सारी मंजिलें आसान फरमा, कब्र के अजाब से बचा, कब्र के फितनों से हमारी हिफाजत फरमा, हमारी औलाद की, नस्ल की, सब की हिफाजत फरमा, सारी मेहनतें कबूल फरमा, मदारिस की लाइन से हो, मकातिब की लाइन से हो, ये ज़िक्र की मजलिसों की लाइन से, दावत व तबलीग की लाइन से, जितनी मेहनतें अहिया दीन की हैं, सब मेहनतों को कबूल फरमा कर या अल्लाह दीन को ज़िंदा फरमा, हमें दीन पर कायम फरमा, सब की नुसरत फरमा, उम्मत पर आने वाले मसाइब को दूर फरमा, उम्मत पर आने वाले मसाइब को दूर फरमा, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा, हरमैन शरीफ़ैन की, दुनिया की सारी मसाजिद मदारिस की हिफाजत फरमा। या अल्लाह गैरों के दिलों में भी रहम करम डाल दें, उनको भी दीन ईमान की तरफ माइल फरमा, हम सब को अकायद हक का नसीब फरमा, आमाल सालिहा नसीब फरमा, अखलाक हसना हमें नसीब फरमा, हमारा यहाँ जमा होना कबूल फरमा, जमा होना कबूल फरमा, हमारी तरक्की का सबब बना, न कि तनज़ुली का। या अल्लाह हमें सेहत व आफियत नसीब फरमा, हम सब के जायज़ मकासिद में कामयाबी नसीब फरमा, हलाल रोज़ी नसीब फरमा, हलाल रोज़ी नसीब फरमा, हमारी भी बेहतरीन तालीम और तरबियत फरमा, हमारी औलाद और नस्ल की भी बेहतरीन तालीम और तरबियत फरमा, जो मांगा वो भी नसीब फरमा, और जो नहीं मांग सके वो भी अता फरमा, हमारा कहना सुनना कबूल फरमा, गलतियों को माफ़ फरमा, हमें दीन की सही समझ और उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, वतुब अलैना इन्नका अंत तवाबुर रहीम, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعليه وصحبه برحمتك يا رحمة آمين.
کی طرف سے تمام مہمان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات وقت فارغ کر کے تشریف لائے, اللہ پاک سب کھانے کو قبول فرمائے. انشاءاللہ چائے کا نظم کیا گیا سبھی مہمانوں کے لیے, تو درخواست ہے کہ بھائی اس میں بھی شرکت فرمائے. حضرت سے مصافحہ ملاقات بھی کر لیا, اگر وہ حضرت کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ حضرت کے لیے یہاں تشریف فرما رہیں گے. ایک بات جو یہ ہے کہ ہر ایوری سیکنڈ سنڈے مجلس ہوتی ہے, تو الحمدللہ حضرت باقاعدہ اہتمام سے سارے اپنے دوسرے کاموں کو آگے پیچھے کر کے ہمیشہ بہت کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت تشریف نہ لائے ہو, الا کہ کہیں باہر سفر پر ہو. جب حضرت خود اتنی قربانی کر کے ہمارے لیے جب فارغ کر سکتے ہیں تو ہم بھی تھوڑا سا اپنے اوقات کو, اپنی ضروریات کو, اپنے کام کاج کو تھوڑا سا آگے پیچھے کریں. ایوری سیکنڈ ویک کو ہوتا ہے, ہر ہفتے بھی نہیں, ہر دوسرے ہفتے کو ہوتا ہے, تو ہم وقت فارغ کر کے اس میں تشریف لائے. جو آتے ہیں پابندی سے آتے ہیں, آپ ان سے باقاعدہ پوچھ سکتے ہیں کہ کتنا اس کا فائدہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم واٹس ایپ پر بھی ڈال دیتے ہیں, جو ہمارے مجلس کے میں نہیں ہیں تو اگر وہ جوائن ہونا چاہ رہے تو ان شاء اللہ آپ نمبر کسی کو دے دیں, آپ کو مجلس محمود بھائی کی جو ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے تو اس پر بھی یہ لنک ہوتا ہے اور وہ مجلس وہاں سے بھی آپ سن تو سکتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے دوستوں بزرگوں کہ واٹس ایپ پر سننا, مکسل پر سننا, بے شک ہمیں ثواب ملے گا اور ہم نے حضرت کی بات سن لی, لیکن صحبت کا جو فائدہ ہے وہ باہر سے سننے میں اس کے مقابلے میں وہ بات نہیں ہے. ہم یہاں آ کر کے قربانی کر کے آئیں گے, اس کا فائدہ الگ ہوتا ہے. پھر ہم حضرت کی صحبت میں بیٹھیں گے تو بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شاید ایسے بھی ہم نوجوان یہاں آتے ہیں جو سمجھتے بھی نہیں ہیں, انگلش سمجھتے, اردو سمجھتے بھی نہیں ہیں, لیکن انہوں نے خود ہمیں بتایا کہ ہم یہاں آ کر کے خالی بیٹھے مرتا آئی ڈی انڈرسٹینڈ اے ورڈ, ایک ورڈ سمجھ میں نہیں آیا, بٹ آئی ڈونٹ نو, آئی جسٹ فیلٹ سو مچ پیس, مجھے اتنا فائدہ ہوا دل میں, حالانکہ میں نے ایک لفظ بھی سمجھا نہیں کہ حضرت کیا فرما رہے تھے. تو صحبت, صحابہ صحبت کی برکت سے ہی وہ صحابی بنے تھے, تو صحبت کا جو فائدہ ہے نا وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ہم اہتمام فارغ وقت فارغ کر کے تشریف لائے, ہم بیٹھے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں حضرت کی نظر رہتی ہے, حضرت دیکھتے ہیں. فارغ مجلس فارغ ہوتے جو آتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر ہفتے ہر جب بھی مجلس فنش ہوتی ہے سبھی حضرات سے حضرت باقاعدہ اہتمام سے مصافحہ کرتے ہیں, نظر ڈالتے ہیں. ہم جیسوں کے لیے حضرت نے ایک مرتبہ, آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی حضرت نے ایک دفعہ اس پر تبصرہ کیا ہے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں تھے, رمضان مبارک مہینہ پورا ہوا, عید کا دن ہوا, سب مہمان باہر جا رہے تھے, حضرت ابھی تک وہیں تھے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سارے مہمانوں سے مصافحہ کر رہے تھے اور ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نظر یوں کر کے دیکھ رہے تھے حضرت کی طرف. حضرت خود سے ہم نے خود باقاعدہ, آپ حضرت نے بھی سنا ہوگا کہ کھڑی نظر ڈالی تھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ کئی دنوں تک دل میں ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی لائٹ بلب جل رہا ہے. تو یہ صحبت کا فائدہ ہے, بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے جو ملتا ہے وہ باہر سے سننے سے وہ اس کا ہمیں علم مل جائے گا, جو حضرت فرما رہے وہ اس سے ہمیں انشاءاللہ مستفید ہو جائیں گے, لیکن صحبت کا جو فائدہ ہے وہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. تو ہم تھوڑا سا وقت فارغ کر کے, ہم اہتمام سے آئے, ہمارے قریب میں ہی ہے اور ہم اتنا زیادہ کوئی وقت بھی نہیں لگتا الحمدللہ. یہاں سے دوسرے بہت سارے بعض حضرات لیسٹر سے بھی آتے ہیں اور اہتمام سے ماشاءاللہ آتے ہیں, اور حضرت اس کا تبصرہ بھی کرتے ہیں. تو جب حضرت تبصرہ کرتے ہوں گے, حضرت دیکھتے ہوں گے, تو ہمارے لیے دعا بھی کریں گے انشاءاللہ. اور ہمارے ہمیں اپنے بزرگوں سے اور کیا چاہیے گا, ہم حضرت کی توجہ ہمارے اوپر رہے, حضرت کی دعاؤں کے اندر ہمارا ہم رہے, تو یہی تو ہمیں مطلوب ہے اور یہی تو ہم چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم تھوڑا سا وقت اوقات کو آگے پیچھے کریں کر کے, اپنے کام کاج کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے, ہم خود بھی تشریف لائے, ہمارے متعلق جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ہمارے مسجدوں کے بہت سارے حضرت امام ہوتے ہیں, اساتذہ اپنے مکاتب میں مدارس میں پڑھاتے ہیں, ہم اپنے ساتھیوں کو بھی یہاں لے کر کے آئے, وہ بھی حضرت سے فائدہ اٹھاوے, ہم خود بھی فائدہ اٹھاوے, انشاءاللہ ہم فائدہ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا ہمیں.
سبحان اللہ.
ٹھیک ہے بھائی,
وعليكم السلام.